ଆତ୍ମ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି କର ବିଜ୍ଞାନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ହେ କି ଦ୍ୱାରକା ସେ ଏଇଆ କୁକ୍ଷେତ୍ର ସେ ସବ ଲୋକ ମିଳିତା ଥେ ଗୋପୀ ଭାବ ସେ ଭାରତ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଇସି ଭାବ ସେ କଲକାତା ନିକଲେ ତୋ ବହା ପର ଏକ ଦିନ ପହଲେ ମେନେ ଆଜ କେ ଦିନ ଇନ୍ଦ ଜୁମ୍ନ ରାଜା କି ସ୍ତ୍ରୀ କା ନାମ ଥା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉହିଁ କେ ନାମ ପର ଉସ ମନ୍ଦିର କା ନାମ ରଖା ଗୟା ବୃନ୍ଦାବନ ବାଲା ମନ୍ଦିର ତ ଜିସ ଠାକୁର ଜୀ ଜିସ ମନ୍ଦିର ମେ ରହେଙ୍ଗେ ନୌ ଦିନ ତକ ଉନକି ପୂଜା ହୋଗି ଉସକୋ ଏକ ଦିନ ପହଲେ ସାଫ କିଆ ଯାତା ଥା ଉହିଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବିଶାଳ ପହଲେ ତ ରାଜା କେ ନୌକର ଇତ୍ୟାଦି ଯାତେ ଥେ ଔର ଉସକୋ ସାଫ କରତେ ଥେ କିନ୍ତୁ ଜବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉହାଁ ଆଏ ତୋ ଉହେ ଓ ସେବା କୁ ଆପଣ ଆପ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଥ ଯାତେ ଆଉ ଆପଣ ହାତ ସେ ମନ୍ଦିର କେ ବାହାର ଭିତର ସର୍ବତ୍ର ଝାଡ଼ୁ ଲଗାତେ ସାଫ କରତେ ଥେ ଏକ ଘାସ କହିଁ ନିକଲ ଆଇ ହେ ଉସକୋ ବି ବାହାର କରତେ और फिर लाखों खड़ों से उसके बाहर मधुरी का सब साफ करके मधुरी कहीं गाग लगा है सिंहासन पर तो उसको अपने इस बहिर्वास उसको कहते हैं बहिर्वास और उत्तरीय उत्तरीय से उसको साफ करते थे। साफ जाने के बाद में दूसरे दिन जगन्नाथ जी उसमें प्रवेश करते थे और वहीं पर इसलिए आज का दिन के गुंडीचा मंदिर महाजन का रहा है। महाप्रभु जी ने शिक्षा दी ठाकुर को बैठाने के लिए सबसे हृदय रूपी मंदिर को मार्जन करना। उन्होंने कहा ये मंदिर जो है ये कौन है, असल मंदिर कहाँ है ठाकुर जी का हृदय में, हृदय में ठाकुर जी को बैठाना चाहिए। यदि हृदय में बैठा लिया तो जहाँ वो रहेगा वहीं पर ठाकुर जी का मंदिर और सब समय उनके पास में, इसलिए हृदय मंदिर को साफ करना है। इस मंदिर में धूला या टुकड़े टुकड़े इधर उधर सब पड़े हुए रहते हैं, भीतर रहते हैं, दीवारों पर भी फूले फूल हो जाती है। एक वर्ष के अंदर में धोया और साफ नहीं किया गया, कभी कुछ गंदा लगा हुआ है, उस गंदापन को निकालना है। और इस हृदय में बहुत गंदी चीजें भरी पड़ी हैं। एक तो ऐसे ही ये शरीर है मैला, इस शरीर को यदि चमड़ा हटा दिया जाए तो देखो जैसे क्या कैसा सुंदर लगे, आदमी सुंदर भी रहेगा। और ये चमड़ा यदि हटा दिया जाए और रक्त मांस पैखाना डी बदबू से भरा पड़ा, कभी भगवान बड़े दया उसके हृदय में, उनसे हृदय में रहते हुए भी उससे दूर उसको निर्मल बनाना। ये मंदिर जल्द इससे निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अभी 400-500 हजार रुपया खर्च करेंगे मजदूर ही इसको साफ करके एकदम ठीक ठाक बनाए, उनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये विश्व ब्रह्मांड का कोई भी मिस्त्री ले आओ, बड़े बड़े इंजीनियर भी लाओ, डॉक्टर भी लाओ, तो अभी इसका निर्माण करना बड़ा भारी कठिन है। कोटि कोटि रुपये भी दिए जाए कभी ये साफ होगा कि नहीं, ये मुश्किल है। वो महल क्या है, पहले एक कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है बदला करके तब इसमें चैतन्य चैतन्य का प्रसंग है, हम पाठ करेंगे। और प्रसंग के अनुसार में यदि किसी ने अपने हृदय को मार्जन किया, साफ किया, सुथरा किया तो ठाकुर जी बैठेंगे, और नहीं तो कोटि कोटि जन्मों में भी ठाकुर जी नहीं बैठेंगे। बल्कि उसके लिए दंड भी देता। जो गुरु वैष्णव की बातें सुन करके भी और निर्मल हृदय को नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को सुन करके अपने हृदय को निष्कपट और निर्मल बनाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे हृदय में क्या क्या मैल है जरा सुनो अच्छी तरह से, और आज ही कान पकड़ करके प्रतिज्ञा करो ये सब जो मैल है हम लोग इसको हटा देंगे सदा के, और कभी भी वो मैल नहीं आने। अमर जीवन सदा पापे रख नहीं तो कुंभ में रहे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं परे देख दिया छे जे कब क्या वो पार, हमने अब तक दूसरों को उद्वेग दिया है। अपने अपने विचार करके देखो, जो अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने बचने के लिए, अपनी उन्नति के लिए दूसरों को उद्वेग दिया। एक गिलास पानी लाना तो बेटी एक गिलास पानी ला, तुम नहीं ला सकते, ला सकते कि नहीं, कोई बात गर्मी लग रही है, इधर आ जा इधर आ जा, जरा पंखा चल दो, तो तुम नहीं चल सकते। दूसरों को बेकार के लिए तंग करते हैं, तो किसी यही नहीं परे जो उद्वेग, उद्वेग माने क्या, दूसरे के चित्त को अशांत कर देना ही उद्वेग, कभी मत करो। अपने सुख के लिए दूसरों को उद्वेग मत। भजन करने का लिए पहले ये प्लेटफॉर्म बनाना है चबूतरा, जिस पर ठाकुर जी रहेंगे। इसलिए खबरदार प्रतिज्ञा नहीं करो, अपने लिए दूसरों को उद्वेग नहीं देना। ज्ञाति जिगरे क्लेश, कैसे क्लेश दिया, एक बेटा या बेटी माता के गर्भ में आया, वो माता को गर्भ में रख करके कष्ट देती है कि नहीं, या देता है कि नहीं, जैसे तैसे कष्ट देते। हम लोगों ने कितना अपनी मैया को बाप को कष्ट दिया है, याद रखो। पृथ्वी को कितना कष्ट दिया है, पृथ्वी को गंदा बनाया है कि नहीं, पेड़ों को कष्ट दिया है कि नहीं, जीव जंतुओं को कष्ट दिया है कि नहीं। इस तरह से सब समय हम लोगों ने दूसरे जीवों को अपने लिए कष्ट दिया। निज सुख लागी पापे नहीं डरते, अपने सुख के लिए पापों से डरते हैं। दया ही स्वार्थ पर, दया नहीं और स्वार्थ पर है। मान लें कि हम एक दुकान में बैठे हैं, अपने बेटे के लिए तो कमाई कर रहे हैं, किंतु उसमें अनाप शनाप जो काम आते हैं वो दूसरों को कष्ट देकर के लिए नहीं करते हैं कि नहीं, बात होकर करके करते हैं, स्वार्थ पर है। उसी तरह से समस्त विषय में विज्ञान कुमार वकील वकालत करता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, किंतु दूसरों से कैसे हड़पता है, बात है कि नहीं। डॉक्टरों को देखो, जो जो धन कमाने वाले हैं सबका ऐसा है। एक भीख मांग रहा है, उसको थोड़े से ही काम चल जाएगा, किंतु झूठ बोल करके इधर से कर करके दूसरों से अधिक भिक्षा मांग करके फिर उन्हीं के हाथ में बेच करके पैसा जमा रहा है, तो ये क्या हुआ। इस तरह से अपने सुख के लिए हम पापों से नहीं डरते हैं। ठाकुर जी का नाम करके, दूसरे लोगों का नाम करके, दयाहीन होकर के और स्वार्थ पर होकर के दूसरों को भी क्लेश देते हैं, और उससे भयंकर क्या है, सुख है दुखी। देखते हैं कि पड़ोस वाला दुखी है तो हम सुखी होते हैं, और यदि कोई जरूरत होगी बिना किसी कारण के भी, कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं उत्तर तथा देंगे दक्षिण, बिना कारण के झूठ बोलते हैं सदा मिलता है, जरूरत नहीं है कभी बोलते हैं। पर दुख सुख कर, और पर दुख दूसरा यदि दुखी है तो उसमें हम सुखी होते हैं, और दूसरा यदि सुखी है तो उसको देख करके दुखी। झगड़ा किस लिए, इसलिए तो झगड़ा। ये सब हृदय की मलिनता है, ये झाड़ू से कैसे साफ होगा, कैसे होगा, इसको साफ करना है यदि भगवान का भजन करना है तो। ये सब शिक्षा है। दूसरों के सुख में सुखी हो, दूसरों के दुख में दुखी हो, स्वार्थ न रहे, बेकार का झूठ मत बोलो, यदि झूठ बोले तो भगवान के लिए बोलो, भगवान के लिए बोलो, तब तो हो सकता। और भगवान भी नहीं कहते कि तुम हमारे लिए झूठ बोलो, किंतु ऐसी कुछ भगवान के संबंध में कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे कि वसुदेव जी को झूठ बोलने का कारण हो गया, कृष्ण को बचाने के लिए, ऐसी कोई समस्या है तो बोलो, अन्यथा झूठ मत बोलो। झूठ दो होता है, एक होता है व्यवहारिक और एक होता है परमार्थी। कभी कभी व्यवहारिक जो झूठ है वो परमार्थिक सत्य के लिए इस झूठ को हम बोल सकते हैं, परमार्थिक सत्य के लिए। जैसे एक गाय को बचाना है तो हम कहते हैं कि इस गली में गाय नहीं आई है, घर में उसको छिपा रहे, दूसरों की प्राण की रक्षा करने के लिए कर सकते, अन्यथा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अशी सकम नाचते माथे में, क्रोधी दंभ परायण, ये सब मैल है हृदय की। अशेष कामना, नाना प्रकार की कामनाएं, कैसी कामनाएं, भक्ति की नहीं उसको तो छोड़ दो, संसारी कामनाएं, मैं बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूं, अभी पढ़ रहा है छोटा सा बच्चा, मैं बहुत बड़ा, लड़की की कामना क्या, अच्छी तरह से पढ़ लिख जाऊंगी, अच्छे घर में शादी होगी, खूब शांत से रहेंगी, सब पर हुकम चलाएंगी, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे होंगे, पढ़े लिखेंगे, कोई इंजीनियर डॉक्टर बनेगा और हमारा जीवन ऐसा होगा, बस सिनेमा में जाएंगे और सब घूमेंगे बड़े आराम के साथ में, जो इच्छा होगी सो ही खाएंगे ना, और क्या काम, ऐसी सब कामनाएं लड़कों में भी ऐसी कामनाएं होती हैं, अशेष एक दो कामना नहीं, कोटि कोटि कामना। क्रोधी दंभ परायण, बड़ा क्रोधी, क्रोध भी दो प्रकार का, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। कुछ लोग अव्यक्त क्रोध होता है, भीतर भीतर रख लेते हैं, तो वो क्या होता है, नासूर बन जाता है। नासूर किसको कहते हैं, भीतर भीतर खाव बढ़ जाता है, यदि क्रोध हो गया थोड़ा सा क्रोध कर 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 फिर समाप्त कर दिया तो वो तो ठीक है, आक्रोध को भीतर रखा ना, पीते 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 नासूर बन जाएगा, पतंदर, वो अच्छा नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा, एकदम जीवन को ले लेगा। इसलिए अव्यक्त से व्यक्त वाला क्रोध कुछ अच्छा है, किंतु ये भी बहुत डेंजरस है, बहुत खराब है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यक्त अव्यक्त किसी प्रकार का क्रोध हो एकदम न रहे, ये क्रोध जाना बड़ा भारी मुश्किल है। यदि कामना है ना, अशेष कामना धन है, तब तक क्रोध रहेगा, जिसकी सब कामनाएं निकल जाएंगी उसको क्रोध नहीं। मध्यम अधिकारियों को जो वैष्णव है, ये जो कनिष्ठ है उनको तो रहेगा, मध्यम अधिकारी है वो क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखे, और उत्तम अधिकारी कोई आप कामनाएं नहीं रही। अभी हम लोग के अंदर में कामना है जो सब लोगों को कृष्ण भक्त बने, इन्हें जब देखते हैं कि इसके विरोधी कोई बात देखते हैं तो हम लोगों को भी क्रोध आ जाता है, तो किसी हद तक तो ये ठीक है, किंतु ये भी उचित नहीं।
और उत्तम अधिकारी कोई कामना नहीं है, ईश्वर ने तो नहीं होता। तब उत्तम अधिकारियों को भी सुखदेव जैसे गोस्वामी को भी क्रोध हो गया, नारद जी को भी हुआ, क्यों हनुमान जी को भी हुआ। भगवान का विद्वेष यदि कोई करेगा तो उसके कल्याण के लिए भी क्रोध करेगा। इसलिए क्रोध को भजन करने वाले व्यक्ति को क्रोध को एकदम झाड़ू मार करके निकालना चाहिए। सबसे हमारा शत्रु ये क्रोध और काम है, काम रहे नहीं क्रोध भी नहीं है, इसलिए कामनाओं को हटाओ। मैं बहुत बड़ा भारी भक्त हूं या भक्ति हूं और किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध हो गया। इसलिए जो मंगल की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति हैं उनको क्रोध को छोड़ना चाहिए। दम्भ, दम्भ माने क्या, अभिमान, अहंकार। मैं उच्च कुल में जन्मा हूं, मैं धनी हूं, मेरे अंदर में ये सब गुण हैं, इसलिए दूसरे हमारे अधीन रह करके चलेंगे। यदि प्रतिवाद किया तो क्रोध आ जाएगा, हमारी इच्छा के विपरीत हुआ बस क्रोध आ जाएगा, उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अच्छा विचार करने की बुद्धि नहीं रहेगी। जब क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या बुरा है, क्या हमारा मंगल है, किसमें कल्याण होगा किसमें नहीं, यह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और अंत में विनश्य उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए क्रोध को, काम को दूर रखो यदि भजन करने की इच्छा है, अन्यथा जहन्नम में जाओ कोई बात नहीं। विशेष करके जब यहाँ आओ तो अच्छे अच्छे गुणों को सीखो और उसको अपनाने की चेष्टा करो। मद मत कसदा, धन के मत में क्रोध किसको अधिक होता है, जिसको कुछ शारीरिक बल है ना उनको, जिनको कुछ धन है और जिनको कुछ गुण है, जिसको कुछ सौंदर्य है, इन लोगों का भी क्रोध होता है। ये सब चीजें इसीलिए बतलाया गया भागवत में,
जन्म ईश्वर,
जन्म ऐश्वर्य सुंदर श्री श्री जी, जन्म में उच्च कुल में जन्म, उसको कुछ कहा था ना तो उसको जल्दी से क्रोध हो जाएगा, हमारा अपमान कर दिया। अभी कहेंगे नंदमल जी, इनके पास में खूब रुपया होता है, नंदमल जी नंदू जरा इधर में, इधर में बैठना, उधर से रुक जाओ, इसलिए कहा ये पर विचार नहीं करेगा। कभी ये किस लिए सुनते हैं, गरीब आदमी है, धन उतना अधिक नहीं, राष्ट्रपति के बेटे के रूप में इनका जन्म नहीं हुआ और सुंदर भी खूब नहीं, अब तो बूढ़े हो गए और सुनते सुनते उपदेश अब कुछ संशीलता भी आ गई, अन्यथा तो इतना ताना था कि अब फिर मठ में नहीं आएंगे। इसलिए चार चीजें हैं, क्या, जन्म उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य धन रुपया पैसा और विद्या और
श्री
श्री मैंने एक अत्यंत सुंदर लड़का है या लड़की है उसको कुछ कहा देना और सब एकदम साथ ही साथ बिगड़ गया। इसलिए इस मदों में मत जो हैं वो विषय में मोहित हैं और उनमें हिंसा गर्व विभूषण, वो हिंसा दूसरों को कष्ट देना, मारना, जान से मार डालना और गर्व में सब समय अपने को समझते हैं कि यही हमारा भूषण है, किंतु है नरक का द्वार, आज उसी सबको ढूंढना है। और सब बड़ी बातें क्या, निद्रा अवश्य हो तो देखो जैसे निद्रा कितनी आती है, आलस्य कितना है, नींद आती है मैं तो 13 घंटा 14 घंटा सो लेता हूँ, 3 घंटे भी कुछ सो लेता हूँ। भाई ये भजन में और सांसारिक कामों में भी ये बड़ी भारी बात है, हमारे पंडित जी हैं बहुत कम सोते हैं और भी यहाँ पर भी लड़कियों में भी कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम सीखती हैं, महिलाओं में भी, तो उनका भजन होता है। और जो अधिक सोए में निद्रा और आलस्य में घर में झगड़ा होगा, कोई लड़की मान लिया कि 8 बजे तक सो रही है, घर वाले झगड़ा नहीं करेंगे, अभी तक सो रहे हैं, इसलिए विवाद होगा। यहाँ पर मठ में भी इसीलिए कुछ लड़के चले गए मठ छोड़कर, वो 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक सोते थे, आरती में नहीं आते थे, कोई ना कोई जरूर जो कहेगा तो सभी लोग आते हैं आरती में, चलो महाराज जी वही सो रहा है तो हम कहेंगे नहीं, तो दूसरे बच्चे ही जाकर के तंग करेंगे, अंत में झगड़ा लड़ाई हुई, इसके बाद चले गए। इसलिए निद्रा आलस्य हत भक्ति विनोद ठाकुर जी का सुकार्य विरत, अच्छे कामों में चित्त नहीं जाएगा, शुभ कर्मों में मंगल कार्य जो कार्य है उसमें मन नहीं जाएंगे। इसलिए निद्रा आलस्य को छोड़ो, आज के दिन से आज गुंड का मंदिर हृदय रूपी मंदिर से आलस्य को छोड़ो। पर ये आलस्य कैसे छूटेगा महाराज, कैसे छूटेगा? एक आदमी 8 बजे सोता है, आओ उसको हमने कहा कि देखो भाई 4 बजे देवी हमारे पास में आएगा तो तुमको 1,00,000 रुपये हम दे देंगे, सोएगा आप 4 बजे भी आ जाएगा, नहीं आएगा कि नहीं, जरूर आ जाएगा। एक लड़का बहुत ही आलस्य और निद्रा में रहता है और परीक्षा दिया और वो देखा जैसे इस वर्ष हम पास नहीं हुए, किसी तरह से उसको मालूम हो गया कि हमारी कॉपी गई है उस व्यक्ति के पास, उस मास्टर के पास। मास्टर ने कहा कि यदि 4 बजे भोर में आएगा तो तुमको हम पास करा दें, जाएगा कि नहीं?
सोएगा
ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं जिसको ये जरूरत है भगवान का भजन करना, जीवन में उन्नत होना, वो आवश्य प्रमाद को छोड़े, अच्छे कार्यों में ही लगो, जो जगत के लिए उपकारी है हमारे लिए उपकारी है उनको कहते हैं सुकार्य। हम लोग तो वैसे कर्मों को भी नहीं करते जिसमें सुकार्य कहते हैं, भगवत संबंधी कार्य, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, भगवान की सेवा, और उसमें भी तारतम्य है, ये सुकार्य है। आज का दिन इसमें जो सम्मिलित हुआ सुकार्य, किस लिए? चुन चुन करके जितनी हैं धूल कणा और जो कुछ जमी है उसको हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे देखो ये सब चीज़ें मैं इसको निकाल रहे हैं, और पॉइंट आउट करने पर भी यदि नाम नहीं कोई निकाले तो किसका दोष रहा है? अपना दोष है, प्रतिष्ठा लगी आप साठ कर, प्रतिष्ठा के लिए हम क्या नहीं करते हैं, गंदी से गंदी बातों को करते हैं। साठ्य आचरण लोभ का सदा काम, बड़े लोभी हैं किस चीज़ के, दूसरे चीज़ों के, दूसरे व्यक्तियों के पास में जो आकर्षक चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है उसके लिए लोभ, गंदी गंदी चीज़ों के लिए लोभ, काम के लिए लोभ, अर्थ के लिए लोभ, एहन दुर्जन। भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज के दिन हमको हमारे हृदय में ये सब जो चीज़ें हैं गंदी चीज़ें हैं, मैं ऐसा दुर्जन हूँ, सज्जन वर्जित, सज्जनों का संग नहीं, दुसंग में रुचि होती है, अच्छे व्यक्तियों के संग में रुचि नहीं होती, शुभ कार्य अपराधी निरंतर, अपराधी अपराधी माने नमापराधी, सेवापराधी, ये सब अपराध, सब शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मना, शुभ कार्य तो करते नहीं, रुचि नहीं, और यदि किसी ने मना कर दिया कि शुभ कार्य में लगो और अशुभ मत करो तो बिगड़ जाते हैं। सदा अनर्थ मना, अनर्थ मना माने अनर्थ में ही मन लगा, गंदी गंदी बातों में, काम में, क्रोध में, लोभ में मन लगा रहता है, दूसरों की बुराई में मन लगा रहता है, नाना दुखे जर जर, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, दूसरों को जो अशांति देता है उसको अशांति होगी कि नहीं? एक छोटा सा लड़का, 2 वर्ष का 3 वर्ष का लड़का, नंगा खेल रहा है और उसने एक तितली को पकड़ लिया खेल में, और एक नारियल का झाड़ू वहाँ पड़ा था उसमें से सीख पड़ी थी, लेकर के छेद दिया, छेद करके खूब खुश हो रहा है और वो छटपट छटपट कर रहा है और ये बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। घर वाले देख करके भी कुछ कह नहीं रहे, वो लोग भी बड़े खुश हैं, अपने अपने काम में लग गए हैं। अब ये तो हो गया, कुछ दिनों के बाद में जब वो बड़ा हो गया तो साधु बन गया। साधु बन करके कहीं पर वो था बैठा हुआ और चोरों ने चोरी की, चार चोर, और चोरी करके माल उसके पास पीछे में जंगल में छिपा दिया। कुछ दिनों के बाद में पुलिस को पता लग गया और उसको अरेस्ट कर लिया, चोरों को भी और साधु को भी, जो साधु ने के पास में माल पकड़ा गया इसके घर में, इसके बगीची में, और पांचों को ये हुआ हुक्म सूली चढ़ा दो। सूली चढ़ाना फांसी, चारों चोरों को सूली चढ़ाया वो मर गए और साधु को चढ़ाया सूली पर, माने एक बल्लब लोहे का, बस बीच में उसको खड़ा कर दिया और छेद करके नीचे से एकदम ऊपर चला, चारों चोर तो मर गए और ये उस पर चढ़ा दिया, छेद तो गया किंतु मरा नहीं। नियम है कुछ मिनट का समय दिया जाता है, इसमें यदि नहीं मरा ना उतार दिया जाता, तो ये मरा नहीं, छटपट छटपट तरने लग गया, रक्त एकदम निकलने लग गया, भीषण यंत्रणा हुई, इसके बाद में मरा नहीं। तराजन का जो उसको उतारो, मालूम होता है कि निर्दोष व्यक्ति है, तो उतारा गया और उसको निकाल करके चिकित्सा किया, वो ठीक हो गया। अब वो यम के पास में गया, महाराज हमारी ये दुर्दशा क्यों हुई, हमने तो कोई इस जन्म में पाप नहीं किया, बतलाइए तो ऐसा क्यों हुआ, मैं तो जन्म से ही साधु हूं। कहे तुमने दूसरे जन्म में पहले जन्म में छेद कर दिया एक तितली को, तो उस समय तो मैं नाबालक, मैंने छोटा सा बच्चा था। न्याय न्याय है, उन्होंने कहा जी मैंने ठीक किया, और सचमुच न्याय था। तो दूसरों को जो दुख देगा इस जन्म में, दूसरे जन्म में दुख नहीं होगा, जब एक ऐसा एक छोटा सा बच्चा ना भूल भी और उसको कष्ट दिया तो उसको इतना कष्ट होगा, तो इन्होंने अभी संपात कर दिया उसको, जाओ तुम भी मनुष्य होकर के आएगा, तुमको भी ऐसा दुख कुछ होगा तब समझेगा, ऐसे दुख सुख समझता है अपने मन से, ऐसा न्याय करता है। तो वही विदुर जी हुए, इसलिए विचारक थे वो, इसलिए भाई बचपन से भी किसी को दिल मत दुखाओ, किसी को कोई कष्ट मत दो, गंभीर मत बनो, दूसरे की वस्तु चोरी मत करो, ऐसे शुभ कर्म में लगो, इसी के लिए कह रहे हैं ये भक्त विनोद ठाकुर। भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं पाठक एक उपाय विहीन ताते दिन अपनी, अब तो मैं असहाय हूँ, वृद्ध हो गया, हाथ पैर नहीं चलते, दूसरों के सहारे चलना पड़ता है, हो प्रभु मैं अत्यंत दीनहीन हो गया, इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप हमारा कल्याण कीजिए। अभी हम लोगों के लिए समय है, इन चीज़ों को दूर रख करके आज झाड़ू देना है, यही झाड़ू है वचन, झाड़ू से अपने हृदय को साफ करो, तब ठाकुर जी हृदय में आएंगे, अन्यथा लाख हरि नाम करो कुछ भी करो नहीं होगा। सर चैतन्य चैतन्य में बात कर रहा था, दिन में ये पूरी की बात है, महाराज प्रताप रुद्र वहाँ के राजा थे, जिस समय में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए थे। महाप्रभु जी अभी प्रथम वर्ष में आए थे, अभी बाल संन्यासी हैं, 24-25 वर्ष की उम्र है, 24 वर्ष में घर छोड़ दिया और छोड़ करके संन्यास लेकर के पुरी में आए। इसी बीच में दक्षिण प्रदेश भी घूम आए, राय रामानंद से भी बातचीत हो गई है और इसके बाद में रथ यात्रा आरंभ हुई। एक दिन पहले की बात है, महाप्रभु जी ने कहा नौकर चाकर जा रहे हैं प्रतिवर्ष मार होने के लिए, मंदिर को साफ करने के लिए, यदि यह सेवा हमको मिल जाती तो अच्छी बात है। इसलिए महाराज के जो पुरोहित थे काशी मिश्र, उनको कहा ये सेवा हमको मिलेगी। राजा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और उनको सेवा दी। महाप्रभु जी को काशी मिश्र ने कहा कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। उन्होंने मुझको सम्मार्जनी चाहिए, सम्मार्जनी और खड़ी चाहिए। उन्होंने कितने बोझा नारियल का झाड़ू सम्मार्जनी मंगा और हजारों खड़े लगा मंगा। महाप्रभु अपने भक्तों को बुलाया, उस समय में गौड़ीय वैष्णव भी वहाँ पर थे, उड़िया के भी बहुत से और सब लोग थे और कहा जी अभी चलना है गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के। सब भक्तों को बुला करके जब खड़े हो गए, अपने हाथों से एक एक झाड़ू और एक एक घड़ा प्रधान प्रधान लोगों को दिया, सब साधारण लोगों को नहीं, प्रधान प्रधान जो भक्त थे महाप्रभु कीर्तन करने वाले और उनके तत्वों को जानने वाले, उनको झाड़ू और एक घड़ा और सबको अपने हाथों से तिलक लगाया और चंद माला दिया सबको। साधारण रूप में ऐसा नियम है, कोई सभा इत्यादि होती है तो कोई एक व्यक्ति साधारण स्वरूप करके सब लोगों का माल्या आकर्षण करता है और यहाँ पर स्वयं प्रभु ही चैतन्य महाप्रभु ही उठ करके सबको अभिवादन किया और सबको माला लगाया और तिलक लगाया। इसके बाद में कीर्तन आरंभ हुआ और मृदंग और करताल लेकर के हजारों भक्त लोग झाड़ू बगल में ले लिए और एक एक घट ले लिए और लेकर के चल पड़े। अब वहाँ पर गए, आज भी वहाँ मैं आज से 40 वर्ष पहले जब समय मैं एकदम आया था, करीब करीब 25-26 वर्ष की उम्र, गुरु जी के साथ में पहली बार गया था, उस समय देखा इतने असंख्य लोग, कम से कम तो 25-30 दल कीर्तन के, सब लोग खड़े हैं चारों पर, कौन आएगा जाएगा पीछे जाएगा, जैसे कि कुंभ का मेला होता है ना, उसमें आगे चलने आगे स्नान करने की विधि होती है कि कौन करेगा कौन करेगा, तो वहाँ पर भी ऐसी है। तो गौड़ीय वैष्णव लोग महाप्रभु के प्रिय हैं, इसलिए गौड़ीय वैष्णव को सबसे पहले प्रवेश कर दिया। गौड़ीय वैष्णव में भी अब बहुत से दल हैं, एक दो दल हैं सिद्धांत जी, तो उसमें से सभी लोग हजारों लोग कीर्तन मृदंग लेकर के, हम लोग जब गए तो इतना चार मृदंग और ढोल करताल बाजा झाजा तांसा और कम से कम तो 700-800 आदमी हम लोग गुरु जी महाराज जी के साथ में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करने के बाद में भीतर गए, आंगन है चारों तरफ से, उसके बीच में मंदिर है, बहुत विशाल आंगन, हजारों आदमी झाड़ू लेकर, पहले तो ये सब पाठ हुआ और पाठ होने के बाद में सभी लोग को झाड़ू दे दिया,
कीर्तन हो रहा है और झाड़ू लेकर के साफ करने लगे, तो किस रूप में हुआ उसी को बतला रहे हैं। महाप्रभु जी मंदिर के भीतर में प्रवेश किए, गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लैया करीला शोधन, झाड़ू लेकर के शोधन किया, साफ किया, एक साथ में एक पंक्ति में हजारों हजारों लोग साफ करने के पीछे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, सब साफ कर। कुछ लोग वहां पर ऐसे भी होते हैं, झाड़ू तो ले लिया, थोड़ा सा ऐसा किया और फिर दूसरे को दे, काम चोर होते हैं। तो महाप्रभु के समय में भी ऐसे थे, अभी नए नहीं, उस समय भी थे। उन्होंने मार्जनी से पहले धोया, साफ किया, इसके बाद में दोबारा हुआ पूरा भीतर बाहर सब, जितनी चीजें थी वो सब को एकदम साफ किया। मंदिर हम लोग जब गए थे तो मंदिर तब तक तो हजारों वर्षों का पुराना, उसमें घासें भी कहीं नहीं निकल, कुछ लोग खुरपी होती है खुरपी से घासों को निकाल और एकदम साफ। इसके बाद में दूसरी मंडली आई वो साफ हो, तीसरी मंडली आई, करते करते एकदम पूरा मंदिर साफ हो गया। भीतर मंदिर ऊपर सफल माजी गए, बाहर मंदिर का भीतर में सबको करीब करीब एक मील के अंदर में वो मंदिर है, गुंडीचा मंदिर करीब करीब होगा, बाहर भीतर साफ करना सब नहीं, और उसका खंड खंड है, कितने खंड है, और रसोई घर अलग, रसोई घर में कितने चूल्हे हैं और एक एक चूल्हे में सात आठ आठ चूल्हा, एक चूल्हे में ऐसा मूल चूल्हा, उसमें एक जगह लकड़ी देंगे और उसमें छेद हैं, उस पर एक खंडिया, उस पर एक खंडिया, उस पर एक खंडिया, छः सात खंडिया, बीच में एक खंडिया, साइड में इधर उधर में, मान लें कि सात, एक चूल्हे में सात रखने का जगह है तो सात सात पंचाश ये हंडिया बैठ गए। और कैसे पानी वजन से देते हैं माप कर, जो दाल और चावल उसके ऊपर में हाँडी पर हाँडी सब रखा है, किंतु अपने आप मसाला तसाला जो कुछ देना है एक ही समय में दे, एक कड़ी कैसी कला होती है, इतना अपूर्व होता है। जब कोई दाल और चावल खाए बस वो भी जाएगी, हम तो जाते हैं तो वही जरूर वहाँ पर गुजारता है। तो वहाँ पर महाप्रभु जी माज रहे हैं, उसको भी धो रहे हैं, लिप रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं कोई अछूता नहीं रखा, सब लोग कर रहे हैं क्या, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, पूरा पूरा नहीं करने पर भी
कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण, झाड़ू दे दो हमको, कृष्ण कृष्ण तुमसे थक गए हो, और जबकि धो रहे होने लगेंगे ना, कृष्ण कृष्ण हमको दे दो घड़ा सा पानी, वो उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, और पानी कहाँ से आ रहा है, इंद्र सरोवर से, लाखों आदमी लग गए हैं, लाइन लग रही है, और कितने ठक्कर से कितने टूट रहे हैं फूट रहे हैं, सभी लोग बड़े उत्साह में हैं। भूल धू सकता हूँ देखी दे शोभावन, कहाँ कहाँ अश्रु जले गड़े सम्मान, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, प्रेमोल्लास प्रेमोल्लास से शोधन लयन कृष्णा, झाड़ू लगा रहे हैं और कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए हृदय कैसे शोधन हो रहा है, झाड़ू से हो रहा है ना, कैसे नाम के द्वारा हो रहा है। अच्छा मान लिया कि कोई आदमी 10 वर्ष तक नाम कर रहा है और हृदय शोधन नहीं होता, इसका मतलब क्या, क्या मतलब? 10 वर्ष तक झाड़ू दे रहा है, हरि नाम कर रहा है, हरि कथा भी श्रवण कर रहा है, हरि कथा भी सुन रहा है और ठाकुर जी की पूजा भी हो रही है। और फिर वैश्वधन ने यह क्रोध जैसा ही तामसिक भाव, लड़ाई झगड़ा विवाद, तो मतलब है जैसे झाड़ू दिया नहीं। इसलिए महाप्रभु जी शोधन कर रहे हैं, महाप्रभु खुद आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, भूलि धूसर तनु देखित सु। जब झाड़ू दे रहे हैं तो धूला उठती है, धूलि उठती है, सुनने से क्या होगा?
सिर भर जाएगा।
एक तो सुने जैसा सुंदर बहुत पर अब धूलि उस पर लग रही, एक श्यामला रंग उस पर धूलि लग रही, वो कौन? कृष्ण, वो धूलि के समय। और यहाँ पर और भी सुंदर दिख रहा है, भोग मंदिर शोभन कर, भोग मंदिर मैंने वही जो बताया उसी मनुष्य का प्रांगण सफल आवास क्रमे परिता शोभन, जितने भी घर हैं सब का उन्होंने शोधन किया है। त्रिण बुली छीतु छीतु मैंने सब एकत्र कर लिया, बहिर्वास से लैया खिलाए बाहर कर लिया, महाप्रभु जी ने अपने बहिर्वास में ले और ले करके मंदिर से बाहर दूर फेंकाए, निकट नहीं, निकट फेंकने से क्या होगा? आवास आवास उधर कथी रह जाएगा, अर्थात अभी थोड़ा सा बाहर किया, अच्छी तरह से दूर नहीं भगाया, तो फिर हवा लग करके, हवा माने गंदे लोगों की हवा लग करके फिर वो आ जाए, इन्हें खूब अच्छी तरह से साफ करना है। यही मत भक्तवान परी निज बासे तीन भूलि बाहिर फैलाए परम हरि से, प्रभु का के कतो करिया छ सम्मान, प्रभु जी कह रहे हैं भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसने कितना साफ करके कितना कितना भूलि बाहर किया, फेंको मत अभी, अपने अपने कपड़े में ले करके रखूँ, मैं देखूँगा इसलिए किया सब कुछ में ये परिश्रम करके इसलिए देखना चाहिए। अब लोग मन से साफ करने लगे, झाड़ू दे करके अपना अपने कपड़े में रख, प्रभु कहे सबा झाटान बोझा एकत्र करिला, सबा कहते महाप्रभु बोझा देख, सबको एकत्र करके कहिए अपना तुम यहाँ रखो, अपना रखो, सब लोगों ने रखा, महाप्रभु जी ने जो झाड़ू दिया महाप्रभु जी का सबसे अधिक, तब महाप्रभु जी ने अधिक परिश्रम किया। मत अभ्यंतर फरीला मार्ग, इस प्रकार से झाड़ू देखते साथ हम लोग भी ऐसा करें, अच्छी तरह से परिश्रम से अपने ये मंदिर तो साफ है, इसको अधिक साफ नहीं करना, किंतु हृदय मैला, भक्ति के विरोधी जितनी चीजें हैं सबको छोड़ना। कल तो बतलाया ना उद्धव जी व्यक्ति भी जो भक्ति का विरोधी बातें थी वो छोड़ दिया, जो कि भक्ति है साधारण में, क्या भक्ति है? देवताओं का भजन करना भी एक भी तो भक्ति ही है, किंतु भगवत भक्ति के लिए छोड़ना पड़ेगा दूसरे दूसरे देवताओं को, और विशेष विशेष भक्तों को विशेष विशेष चीजें भी हटानी पड़ी। यहाँ तक कि द्वारका में रुक्मिणी थी और रुक्मिणी के साथ में जो कृष्ण है उनको भी छोड़ना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीजें हैं छोड़ना जो मधुर भाव के विरोधी भाव में हैं, अनुकूल नहीं है, उन सबको छोड़ना है। सब वैष्णव लैया जब दुई बार शोधिल देखी महाप्रभु मने संकोच, दो दो बार मंदिर को साफ किया, अब कहीं भी कोई गंदी चीज नहीं रही, महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। अब केवल 5-7 आदमियों को छोड़ करके बाकी सब लोग गए इंद्र सुनवर और वहाँ स्नान किया और स्नान करके घट में पानी भरा और पानी भर करके सब दिया, लाखों आदमी एक दो नहीं, फिर नहीं।
सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने नहीं धोएंगे, किसको देंगे? महाप्रभु जी के हाथों में। महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु जी, राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी, दामोदर पंत, ये सब लोग हैं, ये मंदिर के पास में वहाँ पर खड़े हैं। और बाकी सब लोग लेकर के हरे कृष्ण कहते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए पानी भर करके ला रहे हैं। सब लोग महाप्रभु जी को जल आनी बोले, जब महाप्रभु कहिल तबे सब घट आनी प्रभु आगे। ऐसा नहीं पानी भर कर लिया और धोना आरम्भ कर दिया, प्रसाद आ गया ना पत्ते पर दे दिया गया, बस जब भी प्रसाद सामने आए ना तभी खाने लग गए। ऐसा मत करो, क्या करना चाहिए? उसमें जो सबसे प्रधान व्यक्ति बैठा है वो सबको आदेश दे, ठाकुर जी का जय दे, महाप्रसाद का जय दे। इसके बाद में जब देखे जब उन्होंने ग्रास उठाया, एक ग्रास दो ग्रास या पांच ग्रास खाया, तब हम लोगों को काम करना, और तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि उन्होंने खा ले। जब वो आदेश दे तो एक साथ में हजार बार नहीं थे, ऐसा नियम होना चाहिए। प्रसाद पाने के समय में बातचीत नहीं करना चाहिए, हो हल्ला बातचीत करना, लड़ाई झगड़ा ये सब, चुपचाप भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसा समझ करके। जैसे गुरु जी की सेवा करते हैं तो भंड भंड बकते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में अर्चन कर रहे हैं तो बक बक करते हैं, ऐसे ही प्रसाद सेवा में भी चुपचाप शांत चित्त से बैठ करके मैं भगवान की महाप्रसाद की सेवा कर रहा हूँ। और यदि बोलना भी है तो हरे कृष्ण, इसके अतिरिक्त नहीं, बीच बीच में प्रसाद की ध्वनि जगाना चाहिए, साधु सावधान, क्या सावधान, महाप्रसादे